ओम शांति। माताएं विदेश की बैठी हैं सब, ऐसा अच्छा। संगम युग हम सभी के लिए वरदान है, वरदान लेकर आया है। भाग्यवान हैं वो सब आत्माएं जिन्होंने इस संगम युग पर बाबा को पहचान लिया। भाग्यवान है ना, हैं? ठंडा से रिलाया, बहुत भाग्यवान हैं। बाबा कहा करते थे, तुम्हारा कितना महान भाग्य है ये तुम्हें जब आखिर में पता चलेगा, जब दूसरे लोग तुम्हारे भाग्य का गुणगान करेंगे तब तुम्हें नशा चढ़ेगा। ऐसे थे हम, ऐसे हैं अब हम, जिनके सामने स्वयं भगवान उपस्थित है। है क्या वायदा किया है उसने, बोलो, चलाओ बुद्धि, साथ लेके जाने का। जाने की चिंता मुश्किल कर देती है, फिर उसे पहले के वायदे बताओ। साथ रहने का, साथ रहने का और क्या वायदा किया है। आज हम पुरुषार्थ की चर्चा करेंगे जिससे हमारा पुरुषार्थ तेज हो। क्या वायदा किया है बाबा ने, चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। और क्या वायदा किया है, एक कदम बढ़ाओ मैं हजार कदम बढ़ाऊंगा। और वायदा, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, दिल से कहो मेरा बाबा तो बाबा हाजिर, और बाबा बंधा हुआ है क्या करने के लिए, भूलना नहीं इन चीजों को, यही तो असली चीज है। प्यार से बाबा को बुलाओ, बाबा बंधा हुआ है मदद करने के लिए। जो आत्माएं कहती हैं मदद मिलती नहीं, कारण खुद लड़ रहे हैं अपनी समस्याओं से, उसका साथ नहीं लेते जिसने साथ देने का वचन दिया है। रियलाइज करें सभी, और संगम युग पर ये बहुत अच्छी बात होती है कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ की गलती को पहचान ले। इधर आ जाओ माता जी, यहाँ भेज दो। अपने पुरुषार्थ में कहाँ गलती हो रही है उसको पहचान ले। बाबा के एक महावाक्य पे ध्यान देना, बच्चे समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं जो ये भी भूल जाते हैं कि मुझे साथ कौन दे रहा है। नोट कर लो, बुद्धि में भी समा लेना इस बात को, कहीं ऐसी जगह लिख लेना जो जरा कुछ दिन पढ़ते रहो समा जाए अंतर मन में। कई बच्चे समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं जो ये भी भूल जाते हैं कि हमें साथ कौन दे रहा है, जिसका साथ मिलने के बाद सोचो आगे। एक सुंदर महावाक्य मुझे याद आ गया, बहुत पुराना, इसी हॉल में बाबा के द्वारा बोला गया। एक तरफ अक्षौणी सेना हो, समझते हैं ना सब महाभारत का, दूसरी तरफ तुम अकेले, लेकिन जीत तुम्हारी ही होगी क्योंकि सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ है। समा दो इसको भी अपने अंदर। डराने वाली बातें बहुत आ रही हैं और आएंगी। रोज मुझे दो चार फोन, ऐसे आते हैं कि बहुत डर लग रहा है। कौन डरा रहा है मनुष्य को? रावण। नहीं थोड़ी रावण बेचारे को क्यों दोष देते हो, बड़ा अच्छा था। किसी ने कहा रावण आया और लोगों से पूछने लगा, मैं तो कितना अच्छा, सीता को हाथ नहीं लगाया जब तक उसकी मर्जी नहीं थी, टच भी नहीं किया, और तुम क्या कर रहे हो? किसी ने एक जोक एंड एक रहस्य दोनों मिक्स हो गए ना, ये भेजा कि रावण आया और पूछ रहा सबसे कि तुम मुझे राक्षस कहते हो, मैंने मर्यादित युद्ध किया, मर्यादित सीता का अपहरण तो किया, उसके कारण थे, पर उसको हाथ नहीं लगाया उसकी इच्छा के विरुद्ध, तुम क्या कर रहे हो? तो मैं बड़ा रावण या तुम? तो रावण बेचारे को दोष न दें, कौन डरा रहा है मनुष्य को? मनुष्य की अपनी कमजोरी और विशेष रूप से जो सूक्ष्म बात है, मनुष्य के द्वारा किए गए पूर्व में बहुत विकर्म, उसको डराते हैं, अंदर ही अंदर आत्मा को भयभीत करते हैं। उससे बचने के लिए पुण्यों का खाता, योग बल, ये सब बढ़ाना है। तो मैं आपको पांडवों की बात सुना दूं जरा सी, आप सब जानते हैं, जस्ट याद कर लें। दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास मदद लेने के लिए पहुंचे। दुर्योधन को क्या मिला? सारी सेनाएं। और अर्जुन ने क्या मांगा? श्री कृष्ण तुम आ जाओ। कहा पर मैं युद्ध नहीं करूंगा, कि रथ तो हांकोगे, मुझे आप सारथी चाहिए। क्यों? उसके बाद भी बहुत सारी चर्चाएं हैं वहां कि पांडवों में से ही सभी, और सुभद्रा, द्रौपदी और जो रानियां थी उनकी और बहुत सारे साथी कहने लगे थे, तुम अर्जुन श्री कृष्ण को मांग लाया निहत्ता, उसको एक अक्षौणी सेना मिल गई, तुमने क्या किया? तब उसने याद दिलाया, नहीं, जिधर धर्म है उधर ही श्री कृष्ण है, और जिधर श्री कृष्ण है उधर ही जीत है। ये बहुत सुंदर महावाक्य गीता के भी हैं, श्री कृष्ण भी उसमें, श्री कृष्ण ही दिखाया ना, याद दिलाते हैं, जिधर धर्म है मैं उधर ही हूँ, अधर्म जिधर है उधर मैं नहीं हूँ। ये बात बाबा की है ना, बाबा के महावाक्य हैं। जिधर सत्य है, जिधर धर्म है, जिधर पवित्रता है उधर मैं हूँ, और जिधर मैं हूँ उधर विजय है, चाहे माया पर विजय, चाहे परिस्थितियों पर विजय, और फाइनली होगी विश्व पर विजय। तो हम सभी अपने इस स्वरूप को पहचाने और याद करें, बाबा ने हमें साथ देने का वचन दिया है। भगवान वचन देकर तोड़ता नहीं है, मनुष्य तो तोड़ देते हैं। हमने कब कहा था, फट से कह देते हैं। अब एक बहुत सुंदर बात जो मुझे बहुत प्रिय है और आपको भी बहुत प्रिय है, वो आपको याद दिलाता हूँ। और याद दिलाने का लक्ष्य है कि सभी एक विशेष चीज पर ध्यान दें, बाबा पर हमारा अधिकार है। केवल प्यार प्यार नहीं, प्यार तो भक्ति में भी बहुत किया हमने उसको, नो डाउट, हमसे ज्यादा प्यार किसी ने नहीं किया उसको, हम जानते नहीं थे, पर अननोइंगली भी हम उसको बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उसने हमें दिया ही इतना कुछ था। और भक्ति में भी हमारी सुनवाई होती रही, समझते हैं ना हिंदी सब, जिन्होंने संगम युग पर बाप की सुनी भक्ति में, भगवान भी उनकी सुनता रहा, ये रहस्य है। तो बाबा ने बहुत अच्छी एक मुरली सुनाई थी ओम शांति भवन में, 25 साल पहले की होगी। तुम कितने भाग्यवान हो जो प्रभु पालना में पल रहे हो। रोज याद करना है हमें, रोज सुनाओ किसी को तो अपने को पक्का हो जाएगा। मैं भी रोज सुनाता हूँ इसलिए मुझे बहुत पक्का हो गया है। तुम कितने भाग्यवान हो जो प्रभु पालना में पल रहे हो। अब बाबा ने पालना सुनानी प्रारंभ की। देखो आप सब माताएं अपने बच्चों की पालना करती हैं। उसी अनुसार बाबा ने बोला, बाप रोज सवेरे आकर तुम्हें उठाते हैं। ठीक है ये बात, उठाते हैं या नहीं? हम भले करवट बदल लें फिर से, कह देंगे 5 मिनट तो बाकी है ना 4 बजने में, और सो लेने दो 5 मिनट। बाबा भी हंसता होगा ना ऊपर, क्या सोचते हैं ये भी। ये नहीं सोचते 5 मिनट पहले उठा दिया कमाई कर लूं, ये सोचते हैं 5 मिनट और सो लेने दो, और सीधा 5 बजते हैं फिर। तो बाप हमें सवेरे उठाता है, फिर पढ़ाने आता है। पालना यही होती है ना, माताएं क्या ध्यान रखती हैं, बच्चे ठीक से उठें, तैयार हों, पढ़ें अच्छी तरह, भोजन अच्छा खाएं, रात को ठीक से सोएं, दुखी न रहें, सब खाना पीना रहना कपड़े सब अच्छे हों, ये पालना है ना। किसी की गरीब घर में पालना होती है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, खिला नहीं पाते। किसी की थोड़े मीडियम घर में होती है, ठीक ठीक करते हैं। किसी की साहूकार घर में होती है, सब सुख सुविधाएं रहती हैं। और किसी की राजाई घर में होती हो, बोलो, और किसी की पालना भगवान करता हो, राजा से भी ज्यादा। क्योंकि असली पालना इस समय मन की शक्तियों को बढ़ाना, बुद्धि में सद्विवेक भरना, कदम कदम पर गाइडेंस देना, हमें समस्याओं से मुक्त रखना, हमारी सुरक्षा करना, समय के अनुसार, ये बहुत बड़ी पालना है जो बाबा करता है। बहुत सारी पालना ऐसी हैं जिनका हमें पता नहीं चलता, बाबा करता रहता है। हमें पता नहीं चलता कि हम जाने वाले हैं, रास्ते में कुछ गड़बड़ हो रही है, बाबा रोक देता है 10 मिनट। हम सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया, लेट हो रहे आज तो, गड़बड़ हो गई, लेकिन गड़बड़ नहीं होती, बाबा रोक देता है, उस बैक टाइम को गुजर देना चाहता है। तो सवेरे उठकर उठाता है, फिर पढ़ाने आता है, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता है। अच्छा है ब्रह्मा भोजन या नहीं महाराष्ट्र की माताओं को? अच्छा है या ज्वार का डोडा, वो रोटी नहीं मिलती और लाल मिर्ची, ठेसा भी नहीं मिलता, चलता है काम, अच्छा लगता है? ब्रह्मा भोजन से पालना करता है बाबा। फिर कहा, कोई बच्चा अगर दुखों में आंसू बहाए तो क्या करेगा? जो माताएं करती हैं, क्या करेगा? आंसू पहुंचता है, रात को सुलाने आता है। सोते भी साथ में हैं या टीवी देखते हुए? अब सोच लो किसके साथ सोते हैं आप। ये सब कहकर बाबा ने कहा, अगर दुनिया वाले सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। और फिर कहा, अब सुंदर बात सुन लो, समा दो इसको अपने अंदर, तुम उन्हें कह दो भगवान इस समय हमारे लिए खाली ही बैठा है। अपने से बात करो सभी, भगवान मेरे लिए खाली बैठा है, क्या करूं? भाग्य विधाता खाली बैठा है, सर्वशक्तिवान शक्तियां देने के लिए खाली बैठा है, वरदाता वरदान देने के लिए फ्री है। क्या करूं? चिंतन करेंगे सभी, बहुत गहराई से चिंतन करेंगे। कितना सुंदर अवसर है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी चारों युगों की। वरदाता वरदान देने के लिए बुलाता है, सर्वशक्तिवान हमें शक्तियां भरने के लिए बुलाता है, माया को जीतने के लिए हमें बल देता है, गाइडेंस देता है। हमें क्या करना है? परेशानियां कितनी भी हों उनका हल सुझाता है। फोन आया किसी का, ये परिस्थितियां हैं लेकिन इनसे निकलना बाबा सिखाता है। क्या आया? पति बहुत शराबी था, आखिर डाइवोर्स किया। मैंने किया। फिर बच्चा था छोटा 6 साल का, अब वो भी बाप से सब सीखता था, उसने भी वही धंधे शुरू कर दिए। अब वो बच्चा इसके लिए बड़ी समस्या है, लेकिन माँ जो है, जानते हैं ना माताएं सब, अब बच्चे से प्यार भी होगा ही। वो चाहती है मेरा बच्चा ठीक हो जाए, सबके अच्छे हैं, लेकिन बच्चा एकदम निगेटिव है, पैसा भी बहुत खर्च कर रहा है, लड़ाई झगड़ा बहुत करता है, माँ को अशांत किया हुआ है। मैंने पूछा योग लगता है? नहीं लगता। ऐसी परिस्थितियां बढ़ती जा रही है भूतों के सामने, परंतु क्या याद रखेंगे? बाबा का ये महावाक्य जो आप जहाँ पढ़ते होंगे, स्वस्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। और स्वस्थिति बनाने का आधार है स्वमान। इसको लिख लो आप अच्छी तरह, अपने घर में लिख के रख दो। परिस्थिति बिगड़ रही है, योग भी नहीं लगता, पर स्वमान का अभ्यास हो सकता है। दूसरा तरीका है सरल चित्त होना। और सरलता में आजकल मैं एक चीज पे बहुत ध्यान दिला रहा हूँ, आप सब ध्यान दें, कुछ चीजों को स्वीकार करना। जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते उन्हें स्वीकार कर लें, हल्के हो जाएं। हल्के होना पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं? भारी होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब सृष्टि पर जो खेल होने जा रहा है उसको देखना भी बहुत कठिन काम होगा। क्या कहते हैं बाबा, विनाश को देखना, बोलो, मासी का घर नहीं। कैसी स्थिति चाहिए? अचल अडोल और निर्भय। बहुतों को तो विनाश इतना भयभीत कर देगा कि वो मरने से पहले कई बार मरा करेंगे। फाइनल मौत उनके लिए बहुत कठिन काम होगा। क्यों कठिन काम होगा? क्योंकि चारों ओर से जो आत्माएं बंधी हैं, महो, विशेष महो, वो उनको देह से मुक्त नहीं होने देगा। इसलिए जो लंबा काल साक्षी हैं, जो लंबा काल योग अभ्यास में रहे हैं, अच्छे स्वमान का अभ्यास किया है, वो उस समय हल्के रह पाएंगे। तो ध्यान दें आप इस धारणा पर, सरलता, स्वीकार करना। दो बातें हो गई, सरल चित्त और बहुत चीजों को स्वीकार करना। संगठन में भी रहते हैं, ये बात बहुत अच्छी तरह से अपने चिंतन में लानी है कि जो आपके साथ हैं, आपके बच्चे, आपका पति और परिवार, वो हैं तो आपके, इसमें तो कोई बात ही नहीं, लेकिन उनके साथ उनका कर्मिक अकाउंट भी है या नहीं? वो उसमें तो आप हिस्सेदार नहीं है ना, वो उनका व्यक्तिगत है, न जाने किसका कर्मों का खाता कैसा है, वो उन्हें स्वयं चुकतु करना है। और अगर हमारा उनसे प्यार है, हम उन्हें सुखी देखना चाहते हैं, तो हम उन्हें इस कर्मों के खाते को चुकतु करने में मदद करें योग बल से। लेकिन अगर हमारा ही योग नहीं लगता तो ये काम नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा अपने को डिटैच रखते हुए बहुत अच्छे योगी, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस देने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सभी चिंतन करेंगे, आज आप सब यहाँ मधुबन में आए हैं, बहुत अच्छा चिंतन का मौका यहाँ मिलता है। भगवान हमारे लिए खाली बैठा है, क्या करें, अपना सब कुछ देने आया है। जो कुछ उसके पास है वो वापिस लेके नहीं जाएगा, सब देने आया है, लेना हमारे हाथ में। सब पुरुषार्थ की इस बात पर ध्यान दें, बहुत अच्छी तरह ध्यान दें, ध्यान से सुन लेना सीक्रेट। सारे दिन में 5 बार भी, 1-1 मिनट के लिए भी यदि मन में सुंदर चिंतन कर लिया जाए तो स्थिति बहुत श्रेष्ठ रहेगी। जैसे सुंदर चिंतन है, बाबा हमारे लिए खाली बैठा है, वो मुझे सब कुछ देना चाहता है, वो वतन से मुझे दृष्टि दे रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, इतना ही बस काफी है। 1 मिनट, मैं एक महान आत्मा हूँ, मेरा जन्म महान कार्यों के लिए ही हुआ है, मैं तो विश्व कल्याणकारी हूँ, मुझे सबको सकास देनी है। बस 1 मिनट। अब 5 बार कभी भी ऐसे सुंदर चिंतन को लाएं अपने अंदर, लिख लें ऐसी अच्छी बातें अपने पास, आपका पुरुषार्थ बिल्कुल सरल हो जाएगा। पसंद है ये बात, भाइयों को पसंद है? 5 बार अपने कर्तव्यों की स्मृति, जो सुंदर अपॉर्चुनिटी मिली है उसको याद करना, बाबा हमारे लिए क्या क्या कर रहा है उसको याद करना, भविष्य में हमें क्या क्या महान कार्य करने होंगे उसे याद करना, संसार हमारी ओर प्यासी नजरों से देखेगा, वाइब्रेशंस दे दो, वो समय आ रहा है, लोग आपके घर आकर कहेंगे हमारे सिर पे हाथ रख दो, रखेंगे या नहीं, कौन कर सकेंगे इस तरह मदद, जिन्होंने बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव किया होगा लंबा काल। ये एक बहुत सुंदर अभ्यास है कि सूक्ष्म लोक में जाकर हम अनुभव किया करें बाप दादा सामने। बहुत अच्छी ये प्रैक्टिस रोज सभी को 1-2 बार अवश्य कर लेनी चाहिए। सवेरे से हम दोनों बार कर लेंगे तो बहुत सुंदर, केवल 5-5 मिनट सूक्ष्म लोक में बाप दादा सामने, बहुत अच्छी तरह बाप दादा को देखो, डिवाइन स्वरूप, गोल्डन किरणें फैल रही हैं, मस्तक में ज्ञान सूर्य से बाबा चमक रहे हैं, एकाग्र कर दो इस पर। परम धाम में योग लगाना कठिन लगता है बहुतों को, ऐसे लगाओ, फिर बाबा दृष्टि दे रहे हैं, फिर अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं, फिर सिर पर हाथ रख दिया है, फिर मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया। और फिर एक सुंदर बात सबको करनी है, मधुबन वाले बहुत बैठे हैं सभी, ये प्रैक्टिस भूलेंगे नहीं, रोज सवेरे बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो, देख लो सारा संसार, घुमा दो दृष्टि, या सामने धरती का बड़ा सा गोला देख लो, सागर, सारे देश दिख रहे हैं मानचित्र पर, ग्लोब पर दृष्टि डाल दो, लाइट फैलेगी सारे संसार में। ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है ये। अच्छी योगी आत्माएं संसार को दृष्टि देंगे, संसार का कल्याण होगा, माया नष्ट होने लगेगी, अनेक कमजोर आत्माओं को बल मिलेगा, दुखियों के दुख नष्ट होंगे, विघ्न नष्ट होंगे। ये काम सभी किया करें सवेरे शाम, एक एक मिनट, इसमें ज्यादा समय की जरूरत नहीं। और इसलिए भी करें, इससे बहुत बड़ा पुण्य जमा होगा, जिन करोड़ों आत्माओं को मदद मिलने लगेगी, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे पास आकर हमारे पाप के खाते को लाइट कर देंगी, जीवन सरल हो जाएगा। तो ये काम सबको रोज करना है सवेरे शाम। और मैं आपको पुरुषार्थ की एक बात पर और ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो बहुत सुंदर चीज है, जिससे हमारी एकाग्रता बढ़ेगी और आपको श्रेष्ठ अनुभव होंगे, स्मृतियां बढ़ती जाएंगी, स्वरूप ऊंचा होता जाएगा, और वो है पांच स्वरूपों का अभ्यास। करते हैं या केवल योग? पांच स्वरूपों का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। शांतिवन से ही शुरू कराया था बाबा ने ये, तब न ज्ञान सरोवर था न शांतिवन था, बाबा ने बस बहुत थोड़े में बोल दिया था, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, बोलो आगे, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता। बाबा तो थोड़े में बताएगा, लेकिन हम इसको विस्तार से करेंगे, क्योंकि सुंदर अनुभवों के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक है विजुअलाइजेशन, देखना, अपने उस स्वरूप को देखना, और दूसरा बोलो, उस पर अच्छा चिंतन करना। ये बिल अच्छी तरह समझ लें, बिना चिंतन के अनुभूति नहीं होती है। अभी अभी आया ना संडे की मुरली में पीछे, बाबा ने तुम्हें बहुत सारे टाइटल दिए हैं, मनन शक्ति बढ़ाओ, चिंतन करो, और कल परसों था कर्म योग, कल ही था शायद सवेरे, कर्म करते तुम्हें याद करना है। बैठने की बात को बाबा पूरी तरह कैंसिल कर रहा था, हालांकि बैठना जरूरी भी है एकाग्रता के लिए, पर लक्ष्य तो ये है ना कि हमारा जीवन योग युक्त हो जाए। कई लोग योग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जीवन योग युक्त नहीं होता। सोचो दोनों बातों पर, योग करना एक चीज है, जैसे मोटा सा उदाहरण ले ले, कोई व्यक्ति भोजन तो पूरा खाता हो लेकिन ताकत नहीं आती, होता है ना बहुत आजकल, भाई भोजन में सुशील कहता है कीड़े बहुत हैं, वो सब खा जाते हैं। ऐसे योग तो बहुत अच्छा होता हो, लेकिन जीवन योग युक्त न बनता हो। योग युक्त माना जीवन योग युक्त, जी योग करने का प्रैक्टिकल प्रभाव जीवन से दिखाई दे, योग युक्त आत्माओं के चेहरे चमकते हुए, किससे? क्रीम पाउडर से, किससे चमकेंगे? आंतरिक खुशी, प्योरिटी बढ़ती हुई, सुभावनाएं बढ़ती हुई, वैर भाव ईर्षा द्वेष नफरत घटते हुए। बोल, कोई व्यक्ति योग तो बहुत करता हो लेकिन जब मुख खोलता हो तो धुआं निकालता हो, तो कोई उसे योगी कहेगा? योग युक्त के बोल वरदानी बोल, पोलाइटनेस से, ह्यूमिलिटी से भरे हुए बोल, नम्र होंगे या नहीं। और बड़ी चीज, जैसे जैसे योग बढ़ेगा, न्यारे और प्यारे, चारों ओर से डिटेच्ड, उपराम वृत्ति, वैराग वृत्ति। अभी हमारे यज्ञ में वैराग वृत्ति नहीं है, ये गड़बड़ है बहुत बड़ी। और जब तक वैराग वृत्ति शुरू नहीं होगी, संपूर्णता आएगी नहीं। और अब बाबा को कुछ करना पड़ेगा, जब बाबा देखता है कि ये तो क्या बोलूं आगे, सुधरते नहीं हैं, तो फिर बाबा कुछ करता है। तो उसे वैराग्य भी दिलाना है सबको, लेकिन बाबा बहुत पहले से कहते थे, समय तुम्हें वैराग्य दिलाए तो नंबर सारे समय को मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान युक्त विवेक युक्त वैराग्य हमें रहे, चारों ओर से डिटैच, एक में मगन, इधर उधर न देख कर केवल एक तरफ देखें, ये योग युक्त आत्मा की निशानी है। तो योग के साथ पांच स्वरूपों का अभ्यास, आत्मिक स्वरूप, आत्मा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे, चमकती ज्योति मस्तक के मध्य में क्लियर दिखाई दे, फील होने लगे मैं अलग, ये देह अलग, मैं इसकी मालिक, स्वराज्य अधिकारी। बहुत अच्छे चिंतन के साथ आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना है। एक एक मिनट से शुरू करेंगे, एक मिनट, फिर दूसरा मिनट आदि स्वरूप, बिल्कुल सामने खड़ा हो जाए हमारे, ये हूँ मैं, ये था मेरा पहला जन्म, बिल्कुल ये, अब ये शरीर छोड़ के ये, कैसा हूँ मैं उस टाइम, कैसी हूँ, सामने चिंतन में लाओ, संपूर्ण पावन, चमकते हुए चेहरे, कंचन काया, चेहरों पर दिव्यता, सब कुछ प्राप्त। बाबा ने कहा था ना, पैसे गिनने नहीं पड़ेंगे वहां तुम्हें, अथा धन संपदा, सोने के चमकते महल, घरों के आंगन में खड़े पुष्पक विमान, हम बैठकर उड़ रहे हैं आकाश में, उड़ता हुआ देखो, देखेंगे कितना बड़ा घर होगा माताओं का, 100 गज में, 200 में, बोलो, माउंट आबू जैसा, छोटे से छोटे देवता का घर भी 1 वर्ग किलोमीटर में तो होगा ही, क्योंकि उसी में खाने पीने की चीजें, तालाब और कुछ जो सब कुछ है वहीं होगा, चमकते महल। पीछे बाबा ने कह दिया, किसी के चांदी के भी होंगे और किसी किसी के गोल्डन ईंटों के भी होंगे, ईंटें गोल्डन होंगी, लाल काली नहीं किसी का, लेकिन अधिकतर के सोने और हीरे जड़े हुए। तो उसको सामने लाएं। तीसरा स्वरूप पूज्य, कौन सा है माताओं का, शक्तियां, भाइयों का विघ्न विनाशक, हनुमान भी किसी का नहीं है, हनुमान भी है, और भी कुछ पीछे वाले भाइयों का, बोलो महावीर, पीछे वाले भाई बताएं, विष्णु स्वरूप, तीन है ये, इनमें से आप कोई अपना चुन लो और फील करो मैं मंदिर में हूँ, या फील करो मैं कहीं भी हूँ और अनेक लोग मेरे इस स्वरूप को देख रहे हैं और गुणगान कर रहे हैं, वो गुणगान सुनो आप, तो पता चलेगा भक्त हमारे बारे में क्या कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं, हे देवी जागो जगाते तो हैं देवियों को, क्योंकि भगवान ने देवियों को जगाने की बड़ी मेहनत की है, तो भक्त भी जगाते हैं, देवियां जग गई या नहीं, जग गई वे सुशील, जग गई अब देवियां, तो गुणगान करते हैं, तुम असुर संहारिणी हो, भाग्य विधाता हो, पाप नाशिनी हो, सिद्धि दायिनी हो, सुनिए ये संस्कृत में होती है, कुछ हिंदी में, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हो। अपने से पूछो, मैं ऐसी हूं? भाग्य विधाता हूं? कौन होंगे भाग्य विधाता? जिन्होंने अपना भाग्य सर्वश्रेष्ठ बनाया होगा वो यहीं पर मास्टर भाग्य विधाता बन जाएंगे। मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जिनकी अपनी सब कामनाएं पूर्ण होकर तृप्त आत्माएं बन गई, इच्छा मात्रम अविद्या हो गए। तो ये हमारी महिमा है, सब भक्त हमारी महिमा कर रहे हैं। बाबा शुरू में मुरलियां चलाते थे, कहते थे डबल चीज है, तुम बन भी रहे हो और अपनी महिमा भी सुन रहे हो, दोनों को मिला दो, अब ये मैं हूं। तो पूज्य स्वरूप की बहुत गुड फीलिंग, मैं ये हूं। और जिस स्वरूप का जिसने अच्छा अभ्यास कर लिया वही स्वरूप का साक्षात्कार होने लगेगा सबको, जब बाबा साक्षात्कार प्रारंभ कराएंगे धूम मच जाएगी। जो शुरू में हुआ था वो अंत में होगा। चौथा स्वरूप ब्राह्मण। आप कहेंगे ब्राह्मण तो हम हैं, इसके लिए क्या सोचें? चिंतन इसके लिए भी, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बाबा मेरी छत्र छाया है, आंख खुलते ही प्रभु मिलन होता है। सुंदर सुंदर बातों का चिंतन करें, क्या मिल गया इस जीवन में, क्या क्या देखा इन आंखों से, कितने सुंदर सीन देखे। जो जितने पुराने हैं वो अपनी इस चीज को याद किया करें, क्या क्या देखा। याद आ गई मुझे एक बात, यही बाबा आए हुए पहले बहनों से मिल रहे थे, मधुबन निवासियों के लिए आए थे। तब तक सबको, भाइयों को कहा आप लोग खाना खाओ, घरेलू बाबा है ना अपना, भगवान थोड़ा ही। सब गए खाना खाने, बहनों से मिलना पूरा हो गया। डाइनिंग हॉल में कोई भागा गया, जल्दी चलो बाबा बुला रहा है, बहने पूरी हो गई। अब भाई लोग खाना खा रहे, बाबा को बताया कि बाबा 5 मिनट में आ जाए। कहा कोई बात नहीं, बच्चों को प्यार से खाने दो, बाप है ना। हाँ दे रही है। तो देखो ये सीन सुंदर हैं या नहीं। एक सीन सुंदर और सुना दूं, समय होता जा रहा है। विदेशी बहुत आते थे शुरू में, थोड़े थोड़े मतलब, उनसे बाबा ज्यादा मिलता था। मधुबन निवासियों को कहा जाता था भाई आप तो हो ही यहाँ, तो मधुबन निवासियों बेचारे परेशान हुए, बाबा मिलता नहीं। तो सब बोलने लगे, देखो घर भगवान कितना घरेलू हो गया है, बाबा तो विदेशियों का हो गया। आखिर भगवान तक ये आवाज पहुंच गई, बाबा आए। अभी उन दिनों ऑफिशियल प्रोग्राम तो नहीं चलता था, दादी थी बैठी, दीदी अभी नहीं आई थी, मुरली प्रारंभ हो गई थी और बाबा ने यही शुरू की। मधुबन निवासी कहते हैं बाबा तो विदेशियों का हो गया, नहीं बच्चे पहले आपका है। बहुत सारी मुरली चली, फिर दीदी आ गई। दीदी को देखते बाबा, दीदी सुनाए मधुबन वाले क्या कहते हैं, बाबा तो विदेशियों का हो गया है। फिर बहुत प्यार दिया, याद आया शायद रात हमें तो नींद ही नहीं आई, इतना प्यार देख देख के चित्त आनंदित हो गया। अब बाबा के तो सब बच्चे, उनको भी प्यार देना है और इनको भी देना है। तो ऐसे सीन्स को याद किया करें, इन आंखों से क्या क्या देखा कि भगवान अपना भगवान पना तो भूल ही जाता है, मेरा परिवार बैठा है, महान आत्माओं का परिवार बैठा है। है या नहीं? भगवान बनकर नहीं आता, हमारा बनकर, हमारा बहुत लविंग प्यार भरा माता पिता बनकर आता है। तो हम उसकी इस पालना का रिटर्न दें। और फरिश्ता स्वरूप पांचवा, मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूं। बिल्कुल ऐसा महसूस करें ये स्थूल देह हट गया और बच गई मैं आत्मा लाइट के शरीर में, और अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, और फिर वही चिंतन, अब मैं बंधन मुक्त हूँ, मैं डबल लाइट हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र हूँ, मुझे संसार को सकास देनी है, मैं भी बाबा के साथ उसके कार्य के लिए अवतरित हुआ फरिश्ता हूँ, बंधन मुक्त, बोझ मुक्त, पावरफुल। अपने उस स्वरूप को देखें, फिर एक मिनट से पांच पांच मिनट कर सकते हैं चिंतन को, तीन तीन मिनट कर सकते हैं, तो चिंतन के साथ पांचों स्वरूपों का अभ्यास सवेरे और शाम एकाग्रता को बढ़ाएगा। और इससे बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि योग करने को मन लगेगा, इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, योग आकर्षित करने लगेगा और अपना स्वमान ऊंचा उठता चलेगा। तो सभी मधुबन में जब तक आप हैं, जो बाहर से आए हैं, इन सब का बहुत अच्छा अभ्यास करें। बाबा का कमरा, शांति स्तंभ, ये सब जो स्थान है बाबा के चारों धाम, इनमें थोड़ी थोड़ी देर बैठकर सुंदर चिंतन से अपने मन को डिवाइन करेंगे। सुंदर चिंतन का ये समय है और यहाँ पर बहुत अच्छा आप सबको बता दूं, लास्ट में झोंपड़ी से और शांति स्तंभ की ये सड़क जो है ना, 10 फुट 12 फुट चौड़ी सड़क बना लो, इस पर संसार के सबसे अधिक शक्तिशाली वाइब्रेशंस हैं। ये रशिया के साइंटिस्ट शुरू में आए थे, उन्होंने ये बात हमें बताई थी कि यहाँ से और वहां तक बाबा का है ना सब कुछ, यहाँ बाबा यहाँ वहाँ होल, ये बाबा के स्थान घूमने गए थे। मोस्ट पावरफुल वाइब्रेशंस इन द वर्ल्ड, ऐसे वाइब्रेशंस संसार में और कहीं नहीं है, इसका सभी फायदा उठाएंगे। तो अब हम सभी फरिश्ता बनकर योग करेंगे, ओम शांति, और फील करेंगे ऊपर से बाबा की किरणों की बरसात हो रही है। फिर आधा घंटा योग भी चलेगा, सभी उसका आनंद लें पांचों स्वरूपों का अभ्यास के साथ।